ये जीवन का चरम लक्ष्य है, किंतु विचार ये करना है कि अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण, या ये दो अलग अलग बातें हैं अथवा एक है। तो संघ की नीति के अनुसार, मानवाधिक नीति के अनुसार, ये दोनों बातें एक ही जीवन की हैं। जो अपना कल्याण कर सकते हैं उन्हीं के जीवन से सुंदर समाज का निर्माण होता है, और जो सुंदर समाज के निर्माण में लग जाते हैं उन्हीं का अपना कल्याण होता है। दोनों में से एक के अपना लेने से दोनों बातें अपने आप पूरी होती हैं। अब विचार ये करना होगा कि अपने कल्याण का अर्थ क्या है, किसे अपना कल्याण कहते हैं। इस संबंध में मुझे ऐसा मालूम होता है कि यदि प्राणी परम शांति, अखंड स्मृति, अगाध प्रियता प्राप्त कर सके तो उसे समझना चाहिए कि मेरा कल्याण हो गया। और सुंदर समाज के निर्माण की क्या बात है भाई, सुंदर समाज का निर्माण किसे कहते हैं। तो सुंदर समाज के निर्माण का अर्थ है कि जहां दो व्यक्तियों में, दो वर्गों में, दो देशों में परस्पर एकता हो, स्नेह हो, विश्वास हो, अनेकों भेद होने पर भी, कर्म का भेद हो, भाषा का भेद हो, रहन सहन का भेद हो, किंतु प्रीत की एकता हो, विश्वास की एकता हो, लक्ष्य की एकता हो, यही सुंदर समाज का निर्माण है। सुंदर समाज की पहचान ये नहीं है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, पर चलने वाले चाहे जैसे हो, रहने वाले चाहे जैसे हो, ये सुंदर समाज के निर्माण की पहचान नहीं है। जिस समाज को अपने लिए पुलिस की आवश्यकता होती है, न्यायशाला की आवश्यकता होती है, वो सुंदर समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुंदर समाज में तो परस्पर भेद नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती। हाँ, भिन्नता किस रूप में रहती है, जैसे आपका शरीर है ना, उसका प्रत्येक अवयव अलग अलग आकृति रखता है, अलग अलग कर्म करता है। पैर की जो आकृति है वो नेत्र की नहीं है, और नेत्र की जो आकृति है वो पैर की नहीं है, पैर का जो कर्म है वो नेत्र का नहीं है, और नेत्र का जो कर्म है वो पैर का नहीं। किंतु परस्पर में प्रीत की कितनी गहरी निष्ठा है, यदि पैर में कांटा लगता है तो आंखों में आंसू निकलता है, आंख में चोट लगती है तो पैर लड़खड़ाता है। इसी प्रकार समस्त विश्व के साथ हमारी इतनी एक एकता हो, किंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम जो कि अपने को मानव कहते हैं, इंसान कहते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारा मजहब, हमारा इज्म सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका मजहब और इज्म अच्छा नहीं है, सचमुच अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर तुम्हारे सोचो तो सही कि आपके मजहब ने, आपके इज्म ने आपको सुंदर बनाया या नहीं। यदि आपका मजहब सुंदर है और उसने आपको सुंदर नहीं बनाया तो आप कैसे कहते हैं कि हमारा मतलब है, कैसे कहते हैं कि हमारा इधर है। भाई कोई आदमी कहे कि हमारा भोजन बहुत बढ़िया है और बड़ा ही स्वास्थ्यकर है, बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा ही सुपद है, किंतु उससे पूछे तुम्हारी दशा क्या है कि भूख के मारे काम निकाले जा रहे हैं, बड़े कमजोर हो रहे हैं, किसी काम के नहीं है। अरे भाई फिर भी तुम्हारा भोजन बढ़िया है। तो ये जो आज रोग लग गया है कि विचारों का भेद, मान्यताओं का भेद, कर्म का भेद, कि हमको अगाध अनंत रख नहीं चाहिए, कि हमको परम शांति नहीं चाहिए, कि हमको अमर जीवन नहीं चाहिए, कि हमको सामर्थ्य नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं कहेगा। सबकी मान एक, और पिता पुत्र को ले लीजिए, सहोदर बंधुओं को ले लीजिए, सहोदर बहनों को ले लीजिए, पति पत्नी को ले लीजिए, मान एक है प्राणी मात्र की, किंतु रुचि एक नहीं है, योग्यता एक नहीं है, सामर्थ्य एक नहीं है, परिस्थिति एक नहीं है, तो रुचि का भेद है, योग्यता का भेद है, सामर्थ्य का भेद है, परिस्थिति का भेद है, किंतु मार्ग एक है। इसीलिए मानव सेवा संघ मानता है कि दर्शन अनेक है, दृष्टिकोण अनेक है, पर जीवन एक है। तो अनेक दर्शन होने पर भी जब जीवन एक है, इससे ये सिद्ध हुआ कि हमें और दूसरों में चाहे कितने ही भेद हो, किंतु भाई जीवन की दृष्टि से एक है, लक्ष्य की दृष्टि से एक है, इसलिए सब अपने हैं, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। आप कहेंगे कि साहब हम कैसे अपना माने जबकि वे हमारे साथ बुराई करते हैं। ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके साथ बुराई करता है, क्या वो स्वयं अपने साथ बुराई नहीं कर रहा है? आप विचार करें गंभीरता से, कोई बिना चोर हुए चोरी कर सकता है? कोई बिना नित्यवादी अपने को माने झूठ बोल सकता है? कोई बिना अपने को हिंसक बनाए हिंसा कर सकता है? कदाचित नहीं कर सकता। आपको इस बात का तो दुख होता है कि कोई हमारे साथ बुराई क्यों करता है, लेकिन इस बात का आपको परवाह क्यों नहीं होती कि कोई बुरा क्यों है? कल्पना करो, जब तक कोई स्वयं बुरा रहेगा तो क्या वो किसी न किसी के साथ बुराई नहीं करेगा? तो बुराई के नाश का उपाय क्या है? केवल एक बात यही उपाय है कि भाई कोई बुरा न रहे न बुराई करे। इस मूल सत्य को हम भूल जाते हैं और बुराई के बदले में बुराई करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि बुराई करने से बुराई दब जाएगी, मिट जाएगी, नाश हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आज आप बलपूर्वक किसी को दबा दीजिए, कालांतर में वही निर्बल सबल हो जाएगा और आप निर्बल हो जाएंगे और वही दिन स्वयं आपको देखने पड़ेंगे जो आपने बल के दुरुपयोग से दूसरों को दिखाए। इसलिए मेरे भाई आज बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई किसी के साथ बुराई न करे, तो उसका एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि भाई कोई बुरा न रहे। अब कोई बुरा न रहे, इसके लिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को क्या करना है, इस संबंध में आप विचार करें। तो सबसे पहली बात यह करना है कि हम स्वयं बुरे न रहें। यदि हम स्वयं बुरे न रहेंगे तो कम से कम हमारे द्वारा बुराई न होगी। जब हमारे द्वारा बुराई न होगी तब हम हमारा व्यक्तिगत जीवन बुराई के प्रचार में नहीं रहेगा, अब तो भलाई स्वतः होने लगेगी। अब इस बात पर विचार कीजिए कि हम बुरे कैसे न रहे, तो उसका एक बड़ा सुलभ उपाय है और वो उपाय ये है कि भूतकाल हमारा अपराधों स्थिति का कितना ही सदोष रहा हो, कितना ही बुरा रहा हो, किंतु वर्तमान प्रत्येक भाई का, प्रत्येक बहन का निर्दोष है। अर्थात वर्तमान में हम सब निर्दोष हैं। क्यों? अगर आप किसी भाई से पूछा जाए, बहन से पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तो वो ये कहेंगे कि साहब हमने पहले ये किया था, हमको क्रोध आ गया, हमको काम से पीड़ित हो गए, हमें लोभ ने सताया, हमें मोह ने सताया, इत्यादि क्या। किंतु ये पूछा जाए कि बताने से पहले की ये बातें हैं या इस समय की बातें हैं, तो प्रत्येक भाई को या बहन को मानना पड़ेगा कि भाई बताने से पहले की है। इससे ये सिद्ध हुआ कि हम सबका वर्तमान निर्दोष है। जब हम सबका वर्तमान निर्दोष है तो केवल इतनी ही जिम्मेदारी आ जाती है कि जो भूतकाल में बुराई कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे। यह निर्णय, ये अभ्यास नहीं है, ये निर्णय है। और ये निर्णय किस आधार पर है, बोले अपनी अनुभूति के आधार पर है, निज ज्ञान के आधार पर है, जाने हुए के आधार पर है। हम और आप ये जानते हैं कि बुराई अगर बनी है कोई, तो हमसे भूतकाल में बनी है, वर्तमान में कोई बुराई नहीं है। तो भूतकाल की बुराई को वर्तमान में आरोप करना या अपने द्वारा अपने प्रति घोर अन्याय नहीं करना है, इससे बढ़कर हम और कोई बुराई अपने साथ नहीं कर सकते। इसलिए भाई मेरे, जीवन का पहला प्रश्न यही है कि हम वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखेंगे, और उसके सुरक्षित रखने के लिए एक बात बहुत आवश्यक है, और वो ये आवश्यक है कि हम दूसरों को बुरा नहीं समझेंगे। जब तक हम दूसरों को बुरा समझते रहेंगे, तब तक हम अपने को भी बुरा समझते रहेंगे। आपने देखा होगा अपने जीवन में, मैंने भी अनुभव किया है, जब कभी हम लोग बैठकर आपस में परचर्चा करते हैं, तब सिवाय इसके हम किसी को ये बताएं कि नहीं ये भूल गई, इसके सिवाय हम क्या करते हैं, या भाई किसी के ये कहें कि साहब उसने हमारे साथ ये भलाई की। तो दूसरों की हुई भलाई बुराई को हम आपस में कैसे सुनते रहते हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है कि जिसको आपने बुराई करते देखा था वो अभी बुरा है? यदि वो बुरा नहीं है तो आपका ये निर्णय क्या सत्य हो सकता है? क्या सर्वांग में मिथ्या नहीं है? मानना पड़ेगा कि अवश्य है। आप कहें हम कैसे मान ले वो अच्छा हो गया, तो हम आपसे पूछते हैं कि आप ये कैसे मान लिया कि बुरा मोह बुराई है, पर ये कैसे मान लिया? अगर आप किसी को अच्छी मान सकते हैं तो बुरा मानने का आपको क्या हक है भाई? इसलिए हम क्यों झंझट में बढ़े कि हम पर चर्चा करें, हाँ पर सेवा करें, और अगर चर्चा करनी हो तो प्रिय चर्चा करें, प्रिय की चर्चा करें, जो अपना प्यारा है उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो प्रीति की वृद्धि होगी। तो अपना प्रिय कौन हो सकता है भैया? प्रभु। बड़ा सुंदर बात बताई प्रभु, क्यों? वस्तु और व्यक्ति, इन दोनों को यदि हम अपना प्रिय कहेंगे तो इनका तो भाई उपयोग करना है, वस्तु का उपयोग करना है, व्यक्ति की सेवा करना है। तो व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, किंतु इन दोनों को न अपना कह सकते हैं और न ये कह सकते हैं कि अपने प्रिय हैं, क्योंकि प्रिय उसे कह सकते हैं जिससे जाति एकता हो, स्वरूप की एकता हो, नित्य संबंध हो, उसको प्रिय कह सकते हैं। आप देखेंगे कि जो जिसे आज आप अपने शरीर को अपना शरीर कहते हैं, इसकी इससे भी आपकी जाति एकता नहीं। आप कहेंगे कैसे? या जितने भाई बहन बैठे हैं सभी लोग अपने अपने ज्ञान के प्रकाश में इस बात का अभी अभी अनुभव करें कि भाई क्या हम वो नहीं है जो पहले थे? या बूढ़े भी होंगे, युवक भी होंगे, बालक भी होंगे, लेकिन हर भाई को हर बहन को ये हास होगा कि भाई हम तो वही है जो पहले थे, लेकिन क्या आपका शरीर वही है? क्या आपकी परिस्थिति वही है? क्या आपकी अवस्था वही है? तो हरेक भाई को हरेक बहन को मानना पड़ेगा कि भाई हमारा शरीर जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, हमारी परिस्थिति जैसे पहले थी वैसी अब नहीं है। तो परिस्थिति बदल गई, शरीर बदल गया, किंतु अनुभव यह है कि हम वही है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भाई शरीर बदल गया है, हम नहीं बदले हैं, तो बदलने वाले का और न बदलने वाले का जातीय संबंध नहीं हो सकता, केवल मानी हुई एकता हो सकती है, माना हुआ संबंध हो सकता है। तो ये जो हम मानने लगे कि शरीर हमारा है, बस इतना ही शरीर से संबंध है, वास्तव में शरीर की और हमारी जातीय भिन्नता है। तो आप विचार करके देखें कि जब शरीर की और अपनी ही जातीय भिन्नता है तो संबंधियों की अपनी जातीय एकता कैसे हो सकती है? तो वस्तुओं की और अपनी जातीय एकता कैसे हो सकती है? तो जिससे जातीय एकता नहीं हो सकती उसकी ममता, उसकी कामना, उसका तादाद विनाश का मूल हो जाता है। जिसके जातीय भिन्नता है यदि आप उसमें ममता करेंगे तो क्या होगा? न जाएंगे। ये उसकी आप कामना करेंगे तो अभाव में आबद्ध हो जाएंगे, ये दूसरे तादात्म करेंगे तो जड़ता में आबद्ध हो जाएंगे। तो क्या किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस किस्म का हो, उससे ये पूछा जाए, क्या तुम पराधीनता चाहते हो, क्या तुम जड़ता चाहते हो, क्या तुम अभाव चाहते हो, तो कहेगा नहीं चाहते, नहीं चाहते। तो भाई मेरी आपकी जो स्वाभाविक मांग है, आपकी जो वास्तविक आवश्यकता है, वो शरीर के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, वो किसी वस्तु के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, वो किसी परिस्थिति के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, वो किसी अवस्था के द्वारा पूरी नहीं हो सकती। वो पूरी हो सकती है कैसे, जब आप और हम मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते इस बात पर विचार करें कि हम मानव क्यों हैं। तो केवल एक ही बात की दृष्टि से हम और आप मानव हैं कि मानव अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकता है। ये कार्य कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता, कोई अन्य नहीं कर सकता, केवल एकमात्र मानव ही इस कार्य में समर्थ है कि वो अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकता है। इसलिए भाई ये जो विवेक विरोधी संबंध जो आज हमारे जीवन में आ गया है, हम ये सोचते ही नहीं कभी बड़े बड़े ईश्वरवादी महाराज क्षमा करें बिगड़ न जाए, अन्य शरीर से सोचते हैं क्या कि बड़े बड़े ईश्वरवादी ये समझकर हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े सत्संगी हैं, क्या प्रश्न करेंगे, हमारा मन भगवान में नहीं लगता। मैं आपसे पूछता हूं, मन आपकी जानता है, मन जिस धातु से बना है उससे आप बने हैं, आपकी जो जाति है वो मन की है, तो आपको मानना पड़ेगा। बड़े से बड़े मनोविज्ञान इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि मन की, और जो ये कहता है कि मेरा मन है उसकी जाति कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, बिना सोचे कहता है, बिना समझे कहता है, अपने जाने हुए का अनादर करके कहता है। इसलिए भाई मेरे, प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, मन मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है। हाँ एक बात अवश्य है कि उस प्रभु ने जो मुझे वस्तु दी है, योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है, उसके धन से दी है कि मुझे ऐसी मालूम होती है कि मानो मेरी ही, और मुझ पर इतना विश्वास किया है, इतना विश्वास किया है कि मुझे ये समझा है, प्रभु ने मुझे ये मान लिया है कि मैं उसकी दी हुई वस्तु को, वस्तु का सामर्थ्य का, योग्यता का, उसके दिए हुए विवेक रूपी विधान के प्रकाश में उपयोग करूंगा। ये प्रभु ने प्राणी मात्र की ईमानदारी पर विश्वास किया है। किंतु आज हम उस अपने विश्वासी का, जिसने कि हम पर विश्वास किया है, कितना अविश्वास करते हो, जरा सोचो तो सही कि आप बैंक के अकाउंट पर विश्वास करते हैं कि प्रभु विश्वास करते हैं, इस ज्ञान विज्ञान और कला पर विश्वास करते हैं कि प्रभु विश्वास करते हैं। विचार करें, बहुत गंभीरता से विचार करें। तो भाई कोई बिरलाई आपसे कैसा होगा जो अपने को ये उत्तर दे सके, दूसरों को तो बहुत से दे देंगे, अपने को ये उत्तर दे सके कि मेरे जीवन में यदि विश्वास है तो केवल प्रभु का है, केवल प्रभु का है और किसी का विश्वास नहीं है, ऐसा उत्तर कोई बिरला ही दे पाएगा। और जो ऐसा उत्तर अपने को दे सकेगा उसके जीवन में अगौर प्रियता स्वतः जागृत होगी, अखंड स्मृति स्वतः जागृत होगी, निष्कामता स्वतः आ जाएगी, परम शांति स्वतः आ जाएगी। क्यों? जिसकी प्रभु में आत्मीयता हो जाती है उसकी किसी अन्य में ममता नहीं रहती, कामना नहीं रहती, उसका किसी से तादाद नहीं रहता। आप विचार करके देखें, ममता के नाश होने पर किसी भी विकार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, और ममता के रहते हुए माफ कीजिएगा भाई,
چاہے کوئی نماز پڑھے اور چاہے کوئی بن جائے اس کا ارتھ آپ یہ سمجھیے کہ نماز اور بندیا کا ورودھی ورودھی نہیں ہے, لیکن ایک نویدن یہ ہے کہ آپ ممتا کو بنا چھوڑے چار ویر چھ سات اٹھارہ قرآن پڑھ جاؤ, قرآن بائبل سب جا جاؤ, گیتا کا روز پاٹھ کرو, گایتری کا روز جپ کرو, وہ نرتک تو نہیں جائے گا, کالانتر اس کا بھلے پھل ہو, کنتو ورتمان میں آپ کو وشت ہو کر یہ ماننا پڑتا ہے. کیا بتائیں مہاراج, وکار ناش نہیں ہوتے, وکار ناش نہیں ہوتے, کام سے ہم پیڑت ہیں, کروپ سے ہم پیڑت ہیں, لوگ سے ہم پیڑت ہیں, موہ سے ہم پیڑت ہیں, لیکن ہم انتروادی ہیں, ہم ویدک دھرمی ہیں, ہم سناتن دھرمی ہیں, ہم اسلام کو مانتے ہیں. سوچو بھائی ذرا, وچار کرو, وچار کرو گمبھیرتا کے کہ تمہارا پربھو جب تمہاری دشا کو دیکھتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا.